ಓಂ ಶಾಂತಿ. दादी तू है सागर जैसी, गुणों की अद्भुत खान. दादी तू है सागर जैसी, गुणों की अद्भुत खान. खूबियों की खूबा तुम, कितना करूं बखान. प्रकाश मणि बनकर प्रकाश स्तंभ, बनकर प्रकाश स्तंभ. प्रकाश देना जिनका काम, बनकर प्रकाश स्तंभ. प्रकाश देना जिनका काम. दादी प्रकाश मणि है, उस नक्षत्र का है नाम, उस विभूति का नाम. दादी प्रकाश मणि है, उस विभूति का नाम. प्रस्तुत मास अगस्त दादी जी के प्रति समर्पित होता है. हम सब जानते हैं कि यही मधुबन, ये पांडव भवन, इसका प्रारंभ से दादी जी ने कैसे विस्तार किया, कैसे यज्ञ की नाव को लंबे समय तक खींचकर यहां तक लाई, कितनी विधि से, कितनी सुचारू रूप से, कितनी लगन से. तो दादी जी की विशेषताओं को हम सब सुन रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, अनुकरण करने का प्रयास भी कर रहे हैं, अनुसरण करते भी चल रहे हैं. तो बड़ा अच्छा लग रहा है. अभी तक हम सबने दादी जी की विशेषताएं, 12 विशेषताएं सुनी, सबने सुनी, सुनी सबने, सुनी ना. फिर क्या किया, सुनने के बाद जरूर मनन किया होगा. और मनन ही नहीं, अगर उसमें मगन भी हो जाए तो बहुत अच्छा है. हमारा भी सौभाग्य रहा कि दादी जी के साथ 40 वर्ष जो बीते, 35 वर्ष उसमें दादी जी के साथ रहे. दादी जी को देखा, करीब से देखा, बहुत प्यार मिला, बड़ी पालना मिली. और वो अनुभव भुलाए नहीं भूलते जो हमने दादी जी के साथ प्राप्त किए, अनुभव किए. दादी जी की उन विशेषताओं को एक बार स्मरण कर लेते हैं और फिर बाद में मैं आपको दादी जी के साथ के अनुभव भी सुनाता हूं. जैसे पहली विशेषता रही दादी जी की, जो 1 अगस्त को हम सबने सुना, सदा कौमार्य जीवन में रहने वाली दादी कुमार का. दादी को, दादी जी की पवित्रता और जो दिव्यता थी बड़ी अद्भुत थी. हम सब कुमार जो है, दादी को कुमारों की दादी कुमार का कहते थे. और जब कुमारियां होती थी तो कुमारियों की दादी कुमारिका बोल देते थे. तो दोनों तरह से आनंद लेते थे दादी जी के साथ. लेकिन दादी जी को कुमारों से बहुत ही स्नेह था. हम अक्सर करके गीत गाया करते थे दादी जी के साथ. तो कुमारों की जब महिमा करते थे तो कहते थे कि 100 ब्राह्मण से उत्तम एक कुमारी है, और 7 कुमारी के बराबर एक कुमार है, और 700 ब्राह्मण से उत्तम एक कुमार है. तो हे कुमार तेरी महिमा पार है, हे कुमार तेरी महिमा पार है. कैसे हिसाब लगाते थे, हैं 100 ब्राह्मण से उत्तम एक कुमारी है, हैं, और 700 ब्राह्मण से उत्तम एक कुमार है. 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमारी है, तो 700 ब्राह्मण से उत्तम एक कुमार है. 7 कुमारी के बराबर एक कुमार है, 7 शीतलाओं के बराबर दिखाते हैं. और 700 ब्राह्मण से उत्तम एक कुमार है, हे कुमार तेरी महिमा अपार है. हे कुमार तेरी महिमा अपार है। इस तरह से कैलकुलेशन करके जब दादी विदेश जाया करती थी तो उन दिनों में तो बहुत प्रारंभिक दिन होते थे, दादियों से हम लोग अलग नहीं होना चाहते थे और विदेश जाना बड़ी बात थी प्रारंभिक दिनों में। तो हम कहते थे जब विदाई होती थी तो आंसू भी बहते थे और गाते भी थे, जाओ दादी जाओ मोह ममता तोड़ के हम गुजार देंगे दिन तेरी तस्वीर देख के। तो बड़े हंसी और बड़े मनोरंजन के कोई भी ऐसे पल नहीं होते थे जब पूरा ये पूरा जो मधुबन का वातावरण है एकदम आनंद से भरा हुआ प्रतिदिन। अब तो कभी कभार कुछ कल्चरल भी होता है, वो भी थोड़ा नाम मात्र ही होता है, लेकिन उन दिनों में हमारी योग भट्टी भी होती थी तो तीन दिन योग भट्टी होती थी, चौथे दिन खूब नाच गा के बराबर कर लेते थे। दादी का ध्यान ये भी होता था कि भाई बहुत भट्टी किया, बड़े साइलेंस चले गए, कहीं परमधाम में अटक न जाए, तो उनको बैलेंस में लाने के लिए दोनों प्रोग्राम होता था। हम तो सोचते थे तीन दिन में बड़ी अच्छी अवस्था बनी और हम तो परमधाम में ही घूम रहे हैं नाच रहे हैं, दादी ने ये क्या कर दिया, कल्चरल प्रोग्राम रख दिया। लेकिन बाद में पता लगा, और उन दिनों में अक्सर करके होता भी था, कई भाई बहने एकदम मुझे 16 घंटा 18 घंटा बाबा के कमरे में योग करना है और बैठ जाते थे, 18 घंटे के बाद फिर उठते ही नहीं थे, उनका ये यही बदल जाता था। तो उनको लाने में वापस लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। इसलिए दादी जी में जो ये कला थी बड़ी अद्भुत थी। दादी ने अपने जीवन से पवित्रता की जो झलक दिखाई, बड़ा निश्चल बड़ा निर्मल, इस कलयुगी दुनिया में ऐसा जीवन। जब दादी मिलती थी मेहमानों से तो बताती थी दादी ने कभी झूठ नहीं बोला। ये बहुत बड़ा आश्चर्य था कि पूरा जीवन में झूठ ही ना बोला जाए। कभी कभार कोई अगर सही बोल देता था, महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि जब एग्जामिनर पूछता था तो किसी ने बताया इशारा करके, लेकिन उन्होंने सच्चा सच्चा बताया। तो सच्चाई की कितनी मान है दुनिया में, लेकिन आजकल सच्चाई का तो कुछ है ही नहीं हिसाब, कोई सच्चा है नहीं। लेकिन दादी जी की विशेषता सुन के बड़ा कमाल लगता था। तो पहली विशेषता दादी की ये रही कि दादी कौमारी जीवन वाली, दादी कुमार गाते हैं, है ना। आप सबने में से किसने देखा है दादी को? दादी को सबने देखा है सब? अच्छा, कमाल हो गई। फिर दीदी किसने देखा वो तो पूछना ही नहीं। दीदी मनमोहिनी किसने देखा है? दीदी मनमोहिनी को वहां उठाओ उठाओ माता जी उठाओ। क्या बात, दीदी मनमोहिनी देखा है? अच्छा क्या बात है, ये तो बड़े पुराने रतन भाई, इनके लिए ताली तो बजाओ। देखो नीचे बैठे हैं, है? दीदी मनमोहिनी का मतलब है 83 के पहले, है ना, हम 78 में आए, दीदी जी के साथ 6 वर्ष थे। ये भी गजब का है, आगे चल करके ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि आपने रतन में दादी को देखा कि नहीं देखा, फलाने को देखा कि नहीं देखा, ऐसे भी दिन आएंगे, है ना। पल पल हर पल का अलग अलग आनंद है। तो दादी जी में कौमार जीवन का बड़ा अद्भुत बेमिसाल, दादी जी की पवित्रता बड़ी अद्भुत थी। दूसरी विशेषता सुनी हम सबने, सदा एक बल एक भरोसे में नंबर वन। दादी जी में ये जो धारणा थी एक बल एक भरोसा, ये बहुत अद्भुत था। सब में थी, सबके साथ थी, लेकिन सबसे जुदा सबसे अलग भी थी, बड़ा ही अद्भुत था। तो हम सब दादी जी की उस विशेषता को देखें कि एक बल एक भरोसा दादी जी में बहुत भरा था। दादी रोज सवेरे मुरली में आने से पहले, जब मुरली में आती थी तो बताती थी बाबा के पास, बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने क्या क्या मैसेज दिया, क्या क्या संदेश दिया। हर एक की कहानी अद्भुत है। ज्ञान सरोवर जब बनना था तो दादी को बाबा ने कैसे प्रेरणा दी, कैसे वो हुआ, कैसे की जमीन ले लिया जाए, कैसे वो जमीन मिली, कैसे कैसे वहां पर निर्माण कार्य हुआ। हम भी गाते थे उन दिनों में, वाह बाबा वाह, तेरा कर्तव्य निराला, जंगल में मंगल कर दिया ऐसा निराला, वाह बाबा वाह, तेरा कर्तव्य निराला। हम गाते थे और दादी जी आती थी स्टेज पे, गा रहे हैं हम दो तीन भाई, तो बीच में माइक में आकर के बोलती थी दादी से, गाती थी, गा के चली जाती थी, माना हम सबका उमंग बराबर बढ़ाती थी। बहुत ज्यादा एक ऊर्जावान धरणी, और दादी जी का जो व्यक्तित्व था, दादी का एप्रिसिएशन जो था, दादी का गीत सुनना और गीत निर्माण कराना, और यज्ञ के हर क्षेत्र में, हर विंग के हर क्षेत्र में दादी की जो पकड़ थी और जो सबका ख्याल था, दादी सब कलाओं से संपन्न थी, इसलिए सबका बड़ा आदर करती थी। हमें याद है कि हम यहां पर आते थे और दादी जी यहां बैठती थी आंगन में यहीं पर, और ये बहुत पहले की बात है। तो एक दिन दादी ने बुलाया, ये 83 के आसपास की बात, 84 हो सकता है, तो बुलाया, सतीश आओ, कहा कि एक काम करो, बाबा के लिए गीत लिखा है कोई? तो मैंने कहा दादी लिखा तो है। कहा एक दादी का एक कविता एक गीत बना के दो, और उसको हम मुरली में डालेंगे, और वो सब जगह देश विदेश में सब भाई बहने उसको 18 जनवरी पर वो गीत गाएंगे। तो मैंने बना के दिया, और बना के दिया तो हमको 18 जनवरी पर जो दूर दूर वाले हैं, अमेरिका के हैं और दुबई के हैं, ये सब जितने भी हैं, जितने भाई बहने गाने वाले थे, उस गीत को गाते थे, अपने अपने स्वरों में गाते थे। तो मैंने कहा देखो गीत एक और रंग अनेक, वो एक गीत को इतने लोगों ने इतने वैरायटी में गाया और हमको सुनाया, मैं खुद तो खुश हो गया, बड़ा कमाल हो गया। सब जगह दादी जी का डायरेक्शन गया था और मुरली में, और वो गीत गया था, तो उसी गीत को सबने अलग अलग रागों में अलग अलग धुन में जो बनाया वो सुनने लायक बन गया था। ऐसे ही बहुत दिनों से 18 जनवरी पर नए गीतों की सीडी बन के यहां पर आती थी। मैं आता था, फिर बुलाया दादी ने, कहा सतीश बाबा के लिए गीत लिखे हैं? हमने कहा जी दादी लिखा तो है। तो कहा कब सुनाओगे? मैंने कहा दादी जी जब आप कहिए तब सुना देते हैं। तो कहा ऐसा करना कि कल सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। तो दादी कमरा तो ये है, लेकिन ऑफिस यहां बैठती थी, जहां पर बाबा कमरा के बगल ये जो कमरा है ये मामा का कमरा होता था, और फिर बाद में दीदी जी की ऑफिस होती थी, दीदी जी का होता था, तो वो दीदी जी के ऑफिस वहां दादी बैठती थी। तो वहां दादी बैठती थी और दादी के साथ शायद यीशु दादी रही होगी, बहुत समय पहले की बात है, पूरा याद नहीं। और 4 बजे का समय सब योग में गए और हम दादी के साथ बैठ करके दरवाजा बंद करके और दादी जी को गीत सुनाया। तो एक गीत सुनाया तो कहते हैं और भी है? मैंने कहा दादी और भी है, कहिए तो सुनाओ। कहा एक और सुनाओ। फिर और सुनाया, दो सुनाया। तो दादी को बड़ा अच्छा लगा, तो कहा ऐसा करो सतीश, अभी मैं आती हूं मुरली सुनाने के लिए तैयार होके, तो तुम मुरली से पहले जो गीत बचता है उस गीत के जगह पर तुम एक गीत गाओ, और जब तक 18 जनवरी है, एक हफ्ता पहले, जब तक 18 जनवरी है, तुम रोज सवेरे मैं मुरली सुनाने आऊं तो ये गीत सुनाना। तो ये वहां पर सुनाया, सुनाने के बाद फिर कहा एक काम करो, इस गीत की एक कॉपी मुझे दे दो, इस गीत की एक कॉपी जगदीश भाई को दे दो, एक कॉपी रमेश भाई को दे दो, और एक कॉपी जो है बॉम्बे में भेज दो, चाहे वो योगिनी बहन के पास भेजना होता था या दिव्या बहन के पास भेजना होता था, एक उनको भेज दो और वो व्यास बनाएगा, ऐसे करके बोल देती थी दादी। तो मैं उन गीतों को बना करके तैयार करके सबको दे देता था, तो सभी भाइयों से सभी दादियों से मिल करके वो छन करके उनका सबका वो सजेशन जो सुझाव है वो लेकर के हम तैयार करते थे। और फिर यहां से जाने के बाद जब बंबई में जाते थे, बुलाया जाता था, तो वहां जाकर के बहनें कहती थी सतीश भाई ये लाइन और गीतों में आ गया है तो ये लाइन बदल दो। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुखड़े की जो दो लाइन शुरू की है वो लाइन तो हमारी रह जाती थी, बाकी कहती थी सतीश भाई ये बदल दो, ये बदल, पूरा उसका हुलिया बदल दो। तो मैं सोचता था इतना मेहनत करके बनाया, अभी बहनें कहती हैं ये भी बदल दो, तो अभी बहनें कहें और ना मैं ना कैसे बोलूं। फिर हम कहते दीदी ये तो बड़ी अच्छी लाइन है। अरे सतीश भाई क्या है, आपके पास कमी थोड़ी है, आप पास तो डिक्शनरी है, आपके पास तो अब दिमाग बहुत है, शब्द है, आप बदली कर दो। तो मैंने कहा चलो दीदी यहां कहती हैं तो कर लेते थे। और उनके कहने से जब उसके ऊपर हम विशेष ध्यान देते थे तो वो गीत पहले हम तो स्वांता सुखाय लिखे होते थे, बाबा की याद में बैठे हैं बड़ी लगन से वो गीत बन गया, जाने क्या देखा मुझ में मुझे प्यार कर लिया मेरे लाड लेकर, ढेर सारे गीत हैं, चरणों में जगह मांगी थी, और सब सारे गीत जितने भी आप सब सुनते हैं ये गीत जो है वो मैं अपने अपने मन के लिए बाबा की याद में हम गाए, हमको क्या पता कि आगे चल के रिकॉर्ड भी होगा। तो जब रिकॉर्ड होता है तो हमको सोचना पड़ता है कि अब मैं ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव नहीं रहा, अब ये सबका हो गया तो सबको अच्छा लगना चाहिए। तो उसके ऊपर इतनी मेहनत करते थे कि वो गीत जो साधारण होने वाला था वो बहुत विशेष हो जाए। तो हम अंदर अंदर उन बहनों का भी शुक्रिया करता था कि जिन्होंने सब बदल दिया। एक गाना हुआ तो एक भाई ने कहा रिकॉर्ड होने वाला था तो एक दिन पहले कहते हैं सतीश भाई इसमें जो आपने लिखा है, मैंने वो गाना लिखा था ओ बाबा आपकी, ओ बाबा आपकी सेवाएं देखकर खुद सा बनाने की आशाएं सोचकर मन डूब जाता है, यही बस ख्याल आता है कैसे चुकाएंगे तुम्हारे प्यार का बदला। तो बहने कहती ये बदला उदला निकाल दो, ये बदला लेने जैसे होता है। मैंने कहा लो सारा तो बदला पर ही लिखा है, अब बदला भी निकाल दूं तो गाना कहां जाएगा। मैं सन हो गया, कहा भाई जी दीदी ने तो कह दिया है ये बदली कर दो। उनका मतलब था कि बदला रिटर्न के बदले में, ये रिवेंज वाली बात हो गई है, बदला लेने वाली बात है। मैंने कहा अब दीदी ने कह दिया तो मैं थोड़े कहूंगा कि भाई दीदी आपने ऐसा क्यों कह दिया, बहनों का सम्मान भी तो है। तो मैं कहा बाबा ये तो सारा पट्टी जो जिसके ऊपर लिखा गाना वही बदली कर दिया, अब मैं लिखूं तो क्या लिखूं। फिर बाबा को याद कर दिया और आप यकीन न माने एक घंटे के अंदर उसकी इतनी अच्छी हुलिया हो गई। फिर जो आप ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला मन डूब जाता है यही बस ख्याल आता है कैसे चुकाएंगे तुम्हारे प्यार का सिला तुम्हारे प्यार का सिला। हाँ बजा लो ताली बजा लो। तो ये हमने देखा कि उस चीज को अगर आपने बाबा के ऊपर छोड़ दिया और बहनों का रिगार्ड करके छोड़ दिया, दिल से कह दिया तो क्या से क्या बने, जितना भी है भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर वरदान लुटाने वाले, कितने गाने ऐसे हैं जिनको जब परिवर्तन किया तो वो क्या से क्या बन गए। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, जब इस गीत की रचना हुई तो याद है इस गीत को 19 ट्रैक में गाया था महेंद्र कपूर जी ने, 19 ट्रैक में। गीत भी क्या था, पहले तो लिखा था तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, तुमने हसी बनाया 9 लाख इस जहां में, क्योंकि 9 लाख तो बनते हैं, सारे थोड़े बनते हैं। फिर जब गीत बनने लगा और देखा कि रिकॉर्ड होगा तो मैं सोचा कि 9 लाख कहूंगा तो लोग सोचे हमारी तो बात है ही नहीं इसमें, इसको कोई सुनेगा ही नहीं। तो मैंने उसको बदले कर दिया, ओ बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में। तो उस चीज को वो सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी, कैसा था माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया है, ये इश्क है हकीकी, दुनिया क्या जाने इसको क्या चीज है वो चीज। तो वो रंग जो बाबा देता है वो क्या से क्या बना देता है। तो गीत जो पहले होते थे उसमें कहीं नाम वाम नहीं होता था, हम बाबा के लिए लिखते थे, दादियों कहने से लिखते थे, यज्ञ की तरफ से लिखते थे, तो वो गीत अमर हो जाते थे, कालजयी हो जाते थे, सबके कानों तक आज तक भी वो गीत बजते रहते हैं। समय के दौर बदले, वो भी एक ये भी है। अब तो पहले पूछा जाता है कि इसको लिखा किसने है, उस पर यह सब होता है। तो जब नाम लिख जाता है तो लोगों की बुद्धि वहां तक आ जाती है, ये फलाने लिखा है, तो बाबा तक पहुंचते ही नहीं, वहीं तक रुक जाता है, इसलिए वो दिल तक नहीं पहुंच पाते। तो कहने का भाव यह है कि दादी ने एक बल, एक भरोसे जो यहां पर सबके दिलों में राज किया, तो वो दादी का अनुभव कि दादी आके सुनाती थी बाबा से मेरी बात क्या होती थी। मैं सोचता था कि दादियों को बाबा को याद करने की क्या आवश्यकता है। दादी गुलजार दादी यहां पर रहा करती थी, तो दादी जी का भोजन बनाने का कुछ पार्ट मिला। 8 वर्ष तक दादी जी का भोजन बनाता था, दादी कमरे में ऐसे बेधड़क चला जाता था, दादी खिलाता था, दादी के प्रून डाल करके यहां पर मुंह भी पोंछ लेता था। दादी उस बड़ा प्यार तो था ही, लेकिन बड़ी नजदीक आने का बड़ा मौका मिला। एक दिन मैंने कहा, दादी, देखा कि 7 बजे का समय, शाम का, योग में एकदम दादी मगन। मैंने दादी से पूछा, मैंने कहा, दादी आप में कर्मातीत, दादी दादी कर्मातीत तो आप बन गई ना दादी? तो इसके पहले से पूछा, मैंने कहा, दादी जब आपको देखते हैं तो बाबा याद आता है, जब बाबा से मिलते हैं तो भी यही शक्ल होती है, जब हम योग करते हैं तभी आप ही दिखाई पड़ती हैं, आप में बाबा, बाबा में आप, दोनों मिलके एक हो गए हैं। अब बताओ दादी, आप में और बाबा में फर्क कितना है? और फिर आप इतना योग लगाते हैं, आपको तो बाबा याद करता है, आप क्यों इतना बाबा को याद करते हैं? कुछ बाकी है क्या कर्मातीत बनने में? दादी ऐसे जैसे सुन रही, जैसे लगता सुन ही नहीं रही। मैं सुनाता रहा दादी अंदर अंदर। जब मैंने पूछा, दादी है शिव स्वरूप भाई सुना ये, तो दादी से मैंने कहा कि दादी है, दादी इसमें कुछ फर्क है कर्मातीत? अगर आप नहीं बने हैं तो कर्मातीत कोई दूसरा ऊपर से आएगा क्या? हमारी दादी जो दिन को देख के बाबा याद आता है, आप तो बन गई ना। तो दादी क्या बोलती है पता है? ध्यान से सुनो, बोलती है, थोड़ा बचा है ऐसे, निरंतर होने में थोड़ा सा अंतर है बस, ये करीबी। क्योंकि पुरुषार्थ तो हरे को करना है, ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ा, ऐसा नहीं कि उसको किराएदार को मिल गया हो, ऐसे मिल गया हो, है वो तो होता है ना। तो बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, मामा ने जो पुरुषार्थ किया, दादियों ने जो पुरुषार्थ किया, वो एक बल, एक भरोसे पर चलते रहे। क्या नहीं सहन करना पड़ा, कोई बल नहीं, कोई शरीर का बल, कोई दुनियावी बल, कोई अलौकिक परिवार का बल, ये नहीं, बल्कि एक बल, एक भरोसे रहे। दादी की तीसरी विशेषता हम सबने सुनी कि दादी दुआओं के भंडार की मालिक। दादी को दुआएं बहुत थी और वो दुआओं के आधार पर सब चलते थे। कितनी बार दादी जानकी का अनुभव सुनिए, तो दादी जानकी का अनुभव शुरू से ही लेकर रहा। दादी अक्सर करके बीमार होती थी या कुछ होता था तो सबको चिंता हो जाती थी। लेकिन बड़ी गजब की बात थी, जब दीदी का दिन था तो दीदी तो लगभग ठीक थी, लेकिन दादी जानकी बीमार थी। दोनों गए थे बंबई, दीदी का तो जब यहां बताया ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बीपी भी ज्यादा था, तो ऑपरेशन करने की बात है। तो देखा उन दिनों में कि दीदी तो नहीं आई और दादी तो ठीक होके आई, और देखो दादी ने 104 वर्ष तक हमारे बीच में रहा। तो इतना दिन तक चलना, और इनकी दिनचर्या जो सवेरे उठना, रोज एक दिन भी सवेरे हम सोच लें भाई रोज उठते हैं आज थोड़ा सो लें, ऐसा कभी नहीं सोचा। रोज मुरली पढ़ते हैं, कितने साल बीत गए, 80 साल हो गए, एक दिन मुरली अगर ना पढ़ा तो क्या हट जाए, कभी छोड़ा नहीं दादियों ने। है भाई, हम लोग तो कभी कोई छोड़ देता है, हम लोग तो छोड़ भी देते हैं ना। अब सबसे छूटता है, कभी छूटता तो है ना, सबसे छूटता तो है ना, छूटा तो होगा। लेकिन दादियों की डिसिप्लिन देखिए, इतने अनुशासन में रहना, इतना अनुशासनित जीवन, इतना पवित्र जीवन, संगठन में रहकर सबसे मिला के मिलके रहना ये अपने में बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। हम सब जो यहां बैठे हैं हम सबके ऊपर परमात्मा अनुकंपा है, ईश्वरीय कृपा है और सबकी दुआएं हैं, उन दुआओं के आधार से हम सब जिंदा हैं। ये आप यकीन मानिए कि आप यहां पर ऐसे नहीं आए, आप ऐसे नहीं आए, बड़ी लगन के बाद सबकी दुआओं का परिणाम था और सबकी सबका जो स्नेह जो रिगार्ड देते हैं आप रखते हैं उन सबकी देन है। मैं तो यूं कहता हूं कि बाबा के वरदान, बड़ों का आशीर्वाद और सबकी दुआएं ये हमको उड़ाए। क्या समझा? बाबा के वरदान, बड़ों के आशीर्वाद और सबकी दुआएं यही हमको उड़ाए। अगर ये ना हो तो हम यहां हो ना। कहते हैं महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें दिखाते हैं कि कर्ण जब बाण मारता था तो अर्जुन का रथ जो है वो 10 कदम पीछे चला जाता था, और जब ये बाण मारते थे अर्जुन तो कर्ण का रथ जो है 100 कदम पीछे चला जाता था, 100 कदम। तो भी भगवान कहते थे वाह कर्ण, वाह कर्ण, वाह कर्ण, वाह कर्ण, कर्ण की बड़ी वाह वाही करते थे, बड़ी महिमा करते थे। तो अर्जुन से रहा नहीं गया, कहा कि मधुसूदन ये आप कैसा कह क्या करते हैं कि मैं इनके रथ को 100 कदम पीछे कर देता हूं, तब तो आप एक बार भी हमको वाह वाह नहीं करते हैं, और वो हमारे रथ को 10 कदम पीछे करता, आप वाह कर्ण वाह कर्ण वाह कर्ण बोलते हैं, ये पक्षपात कैसा है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे रथ पर ऊपर बजरंग बली बैठे हैं जिनके बैठने से हिल भी नहीं सकता है, और मैं स्वयं विश्व का अधिपति बैठा हूं और तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बैठे हो, तो इतनी महाशक्तियों के तीनों के रहते हुए अगर वो 10 कदम भी पीछे करता है बहादुरी उसकी है कि तुम्हारी बहादुरी? तो ऐसे ही हमारे पास देखिए माया कितनी प्रबल है, हम लोग तभी हिला देती है, लेकिन बाबा हमारे साथ है, ईश्वरीय परिवार है, सब कुछ है, दुआएं हैं, इन दुआओं का परिणाम है जो आप यहां मधुबन में हैं। मधुबन में कोरोना काल के बाद, और वो भी पहला नंबर आपका आया है यहां पर आने का है, और आने वाला जो ग्रुप है पता नहीं उनका क्या होने वाला है, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा ही होगा, सबका अच्छा होगा, दुआएं तो काम करेंगी ना, इसलिए आप सब भी दुआएं करो। जब हमारे दिल से निरंतर दुआएं निकलती रहेंगी तो भले दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन बाबा के बच्चे कोरोना काल में भी आनंद लिया। आप में से कौन है जिन्होंने इस समय को बहुत इंजॉय किया? जो इंजॉय किए, चिंता नहीं हुई, लंबा हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए, लंबा हाथ उठे, वाह क्या बात है, तो एक बार अपने लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छा, बधाई बधाई, बहुत अच्छी, इसको हमने खूब इंजॉय किया, हालांकि असर हुआ अपने ऊपर भी, उससे अलग नहीं रहे, संगठन में है ना, तो यहां संगठन में तो सबको एक साथ कहीं ना कहीं से आ ही जाना है, लेकिन इतना आनंद लिए कि मैंने तो पूरा लिस्ट बना ली, 28 पॉइंट लिखा था कि इसमें हमने खूब आनंद क्या क्या लिया, क्या क्या फायदा हुआ। तो आप सब भी उस चीज का आनंद लिए, तो ये दुआओं का बल था दादी, एक बल एक भरोसा, इसके साथ दुआओं के भंडार की अधिकारी थी, और दुआएं लेना सिखाया दादी की क्लासेस में बराबर मिलता रहा कि दुआएं लेते चलो, सेवा वही सफल समझो जिसमें सबकी दुआएं मिले, और जो दुआओं का अधिकारी बन जाता है उसको फिर कुछ और नहीं चाहिए, जिनके ऊपर दुआओं की छत्र छाया होती है उनका बाल बांका नहीं हो सकता है। हम सब दुआएं कमाएं, स्वयं की दुआ लें, स्वयं को दुआ दें, सबको दुआ दें और सबकी दुआ लें, प्रकृति को दुआ दें और प्रकृति की दुआ लें, परमात्मा को दुआ दें और परमात्मा की दुआ लें। नोट कीजिएगा, क्या कहा? स्वयं की दुआ लें, स्वयं को दुआ दें। क्या है स्वयं की दुआ लेना? स्वयं की दुआ लेना जब हम अपने भाग्य को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, तो समझो ये स्वयं की दुआ मिल रही है। और जब स्वयं को गुणों से संपन्न करते हैं तो ये स्वयं को दुआ देते हैं। सबको दुआ देना क्या है? सबके लिए दुआएं करना, सबको खुश करना, सबको संतुष्ट करना, ये सबकी दुआएं लेना है। और सबको दुआ देना माना सबके लिए भला सोचना, शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, ये है सबकी दुआएं लेना। प्रकृति की दुआ लेना, ये अगर प्रकृति ठीक है, संगम युग में चल रही है, भले खटारा गाड़ी तो है, पुराना है, लेकिन चलता रहे, टायर ट्यूब अगर गाड़ी का पंचर ना हो और गाड़ी भले खटारा है तो क्या हुआ? वो कहते हैं, दुनिया में कहते हैं ना, साइकिल चलाते हैं तो कहते हैं साइकिल हमारी ऐसी है कि घंटी के अलावा सब बजती है और ब्रेक के अलावा सब लगती है। उसमें घंटी नहीं बज रही, बाकी सब पूरी बज रही है, और जब ब्रेक नहीं लगता है बाकी सब लगता है, इधर उधर उधर सब जगह लगता रहता है। ऐसी ये दुनिया, ये साइकिल हमारी, ये गाड़ी ऐसी ही है, पुरानी, लेकिन अगर जतन से चलाया जाए तो ये बड़े आराम से चले, बहुत अच्छा चल सकता है। तो इसको चलाना, ये है प्रकृति की दुआ लेना। ये प्रकृति को धन्यवाद दिया करें, ऐसे ऐसे करके धन्यवाद, वाह शरीर वाह मेरे रथ, ऐसे करें, सब कोई करें, वाह मेरे शरीर मेरे रथ साथी, अंतिम जन्म के बड़े काम के हो, बहुत साथ दिया, साथ देना, बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं है ना तो ये इसको बधाई देना, इसको धन्यवाद देना, यानी इसको दुआ देना, इसकी दुआ लेना और इसको चलाना। करण करावनहार मैं आत्मा हूं, बाबा करण करावनहार है, मैं वो करावनहार है तो मैं करणहार हूं, और मैं करावनहार आत्मा हूं तो ये शरीर जो है, इंद्रियां, ये करणहार है, ये मेरा रथ, ये करणहार है। इसकी संभाल करना, अलग होकर, ये नहीं कि मैं मोटा हो जाऊं तगड़ा हो जाऊं, बल्कि ये शरीर स्वस्थ रहे तब ताकि बाबा की ये अमानत बाबा की सेवा में लगे, बाबा आपकी श्रीमत प्रमाण मैं ट्रस्टी बनकर इसकी संभाल कर रहा हूं, ताकि कल आप मांगे तो मेरी जो सौगात है, मेरी अमानत मुझे वापस करो, तो मैं इसको आपको सुसज्जित, जस की तस धरदीनी चदरिया, बीनी 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 चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, इस चदरिया को बड़े जतन से यूज करना है और उठा के जैसे भी रहे ऐसे करके बाप को दे देना है। इस चीज को इस लगन के साथ इसको चलाना, इसको कहते हैं इसकी दुआ लेना और इसको दुआ देना, प्रकृति को दुआ देना और प्रकृति की दुआ लेना, और परमात्मा को दुआ देना, उसको दुआ क्या दे देंगे भाई, तू चिरंजीव भव, उसको दुआ देना क्या है। वो कहते हैं ना, गानों में भी कहते हैं, हमारे रमेश भाई बॉम्बे वाले, उन्होंने वो मिले जो गीत के रचनाकार थे, तो उसमें है, भगवान भला हो तेरा, मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले वो दुनिया के रखवाले, उसमें भगवान भला हो तेरा। तो कहते ये क्या, भगवान का भी भला कर रहे हैं, तो भगवान का भला क्या करना है? जब आदमी बहुत दुखी होता है तो यही कहता है, भगवान तेरा भला हो, भगवान तेरा भला हो, मेरा एक काम करते। तो भला करने का भाव है उसको धन्यवाद देना, उसको उसका थैंक्स देना, उसका आशीष लेना, उसको धन्यवाद देना, यही है उसको दुआ देना। और उसकी दुआ लेना माना उसकी श्रीमत पर चलना और उसका प्यार पाना। देखिए कितने अनमोल हैं आप यहां बैठे हैं और आपके ऊपर परमात्मा कृपा है। मधुबन में भट्टी करने का भाग्य बड़े मुश्किल से मिलता है, यहां पर पहुंचना मधुबन में और यहां अमृत वेला करना रहना, और जो रहते भी हैं उनका भाग्य जरा सोचिए तो क्या है। ये धरणी संसार की सर्वोत्तम धरणी मधुबन, और मधुबन के तीनों कॉम्प्लेक्स में सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रह्मा बाबा की भूमि, ये जो धरणी है यहां से यहां तक, कितने ज्योतिष ये आते हैं यहां पर और वो बता के जाते हैं यहां, जैसे मैग्नेटिक जैसे ऊर्जा हो जो यहां पहुंचता है इस क्षेत्र में, जैसे प्रफुल्लता आ जाती है, चेहरा यूं खिलने लगता है, चेहरा ऐसे उसका स्वरूप। तो आप सब धन्यभागी हैं और धन्यवादी भी हैं कि आपको मधुबन में इस धरणी में आने का चांस मिला। जब तक तीन चार दिन आप रहिए यहां इतना मगन हो जाइए। बाबा को धन्यवाद दीजिए, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था पहुंच जाऊंगी। आपने टिकट भी कटा दिया, गाड़ी में बिठा भी दिया और हमारी लाइन क्लियर ही पहुंच भी गए, कोरोना वगैरह सब दूर हो गया और आपने सबसे मिला भी दिया, जिनसे जिनसे संकल्प था पूरा भी हो गया, मधुबन में रहने का चांस मिला, मधुबन में पहुंच गए। हम कितने धन्यभागी हैं, हम कितने धन्यवादी हैं, है ना, है धन्यभाग, धन्यवाद। तो अपने भाग्य को सराहिए, जो मिला है उसको अनुभव कीजिए। यहां आके ये हो गया, पेट खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, ये नहीं, ये तो कुछ न कुछ होता रहता है। जहां ढेर सारी प्राप्तियां होते हैं, नो गेन विदाउट पेन, है बिना कुछ किए तो मिलता नहीं है, ये तो मिलना है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन तब जब कुछ त्याग भी करना पड़े। लेकिन हम त्याग नहीं करते, हमारा तो भाग्य ही भाग्य, वो भी त्याग, त्याग क्या है, कंकड़ पत्थर फेंक कर हीरा मिल जाए तो उसको त्याग थोड़ी कहेंगे, अब ये त्याग कहेंगे उसको, वो त्याग नहीं है। हम तो बुराइयां त्याग करते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं। तो ये कितना ढेर सारी चीज मिली है हमको। फिर चौथी बात थी दादी की विशेषताएं, मुरलीधर के मुरली पर अधिकार, मुरलीधर के मुरली पर पूरा दादी का अधिकार था। दादी का मुरली सुनाना बड़ा गजब, ऐसे कहती बाबा बाबा बाबा, ऐसे कहती थी। जब बाबा कहता था बाबा, ब्रह्मा बाबा बोलते थे, बाबा का ये रथ, ये भी तो विकारी है, पतित है, पुराना शरीर है, बाबा ये समझ करो, अच्छा नहीं लगता है। फिर बाबा कहते मैं तो सर्वेंट हूं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते बाबा आप गुलाम कहते मुझे अच्छा नहीं लगता है बाबा, ऐसे ऐसे लगता था दादी मुरली नहीं सुना रही, जिसे डायरेक्ट बात कर रही, ये बात दिल से निकलता था। मुरली सुनाते सुनाते दादी सबको नचा देती, दादी का मुरली पर पूरा अधिकार होता था। और दादी के मुख से जब मुरली सुनते थे, क्या आनंद लिया है, क्या मजा है, तासीर ही उसकी गुणवत्ता ही कुछ अलग थी, वो रंग ही कुछ है। बाबा के मुख से मुरली निकलती थी और फिर दादी के मुख से निकलती थी मुरली, वो मुरली मनभावनी बड़ी मजेदार हो जाती थी। फिर पांचवा विशेषता है दादी की, दादी सदा यज्ञ स्नेही रही और यज्ञ रक्षक रही। यज्ञ की रक्षक थी, यज्ञ की मालिक थी। दादी ने एक एक चीज को बहुत संभाला। दादी ने यज्ञ के एक एक वत्सों पर, हम जब मधुबन में आए तो केवल 50 भाई बहने थे, 50, अब तो संख्या इनकी 1500 से 2000 तक हो गई। तो उन दिनों में दादी का एक एक भाई, एक एक सेवाधारी के ऊपर ध्यान। 83 से कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गया तो मुझे याद है कि जो हम लोगों का भोजन बनाने का किचन में यहां पर है, यहां पर ये करना चाहिए, यहां पर ये करना चाहिए, पूरा टेंट लगाया, छोटा सा मधुबन, और इसमें इतने मेहमान आते थे, इतने मेहमानों का किया, जो 83 में कॉन्फ्रेंस हुआ पूरा हॉल ये भर गया, बाहर बहुत भीड़ थी। और यज्ञ में पहला वो जब था 83 की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इतने बड़े बड़े कलाकार आए, इतने बड़े बड़े कलाकार आए, उसमें आनंद कल्याण जी, आनंद जी और उनके साथ जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, अनूप जलोटा, उस समय साधना सरगम भी आई थी और उनके साथ हुआ आई थी, अलका याग्निक भी आई थी, और बहुत बड़े बड़े कलाकार जो अभी के हैं वो सब आए थे, पंकज उदास, मनहर उदास और तमाम लोग आए थे। तो वो जब देखा क्या रंग थी वो कॉन्फ्रेंस का, तो कहने का भाव ये है कि दादी एक एक का, बड़े वीआईपी को क्या सौगात देना है वो भी, और बड़े उनको वो आए और पूरा रिफ्रेश हो जाए, और कोई छोटा भी यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा ना आए कि जिसको जो असंतुष्ट होके जाए, उसका भी पूरा ध्यान रखना। तो दादी का इतना ध्यान कि ए टू जेड, इन छोटे से लेकर के सेवाधारी से लेकर के सबसे बड़ा जो वीआईपी, वहां तक ध्यान दियाना, ये दादी की विशेषता मैंने देखी है। दादी के साथ रहे बहुत ढेर सारी पालना मिली। यज्ञ की रक्षा के लिए दादी हमेशा, सब भाई बहनों को भोजन अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो दादी का हम सब भोजन बनाते थे, तो भोजन वो तो मंगाती थी दादी, वो तो खाती थी लेकिन दादी कहती थी सतीश जाओ या फलाने जात भेजती थी, जनरल का भोजन ले आओ थोड़ा थोड़ा, वो सब लेकर के दादी टेस्ट करती थी आज कैसा है, किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बहुत हंसाती थी, खूब बहलाती थी, खूब खिलाती थी। मक्खन मानी कहते हैं दादी क्या खिलाती थी, अभी क्या बताऊं, आप तो मुख में पानी आ जाएगा, नहीं यहां तो हम खिला नहीं सकते हैं। लेकिन दादी ने जो रंगत दी, जो रंग दिया, जो इसको आनंद दिया, बड़ा अद्भुत रहा। इसके बाद दादी की विशेषता थी, दादी कर्म के बंधन से मुक्त निर्लिप्त रही। दादी की एक विशेषता यह थी, दादी में सच्चाई सफाई थी, सातवीं बात। आठवीं बात, दादी मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान थी। मैंने देखा कई कितने केस थे कि जो दादी में हमने ये देखा धारणा में, दादी में गंभीरता और नम्रता, दादी इसकी प्रतिमूर्ति थी। दादी में मैंने देखा दादी सदा मैपन और मेरापन से सदा मुक्त रही, संपूर्ण समर्पण लाइफ रही। दादी में मैंने देखा कि दादी में स्वमान भी पूरा था और दादी में सम्मान देने की भी भावना पूरी थी। और आज की मुरली की पॉइंट थी, दादी की विशेषता थी कि दादी स्वभाव और संस्कार मिलाने में नंबर वन थी। ये दादी की 12 विशेषताएं हम सब ने सुनी, उसको मनन करें, उसको गुने, उसको चिंतन करें और उसको धारण करने में हम लग जाएं। आइए बैठिए और एक साथ हमारे साथ पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लेते हैं। कुछ आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, ये आपको बहुत मदद करती रहेगी। जैसे मैं कहूं वैसे कर लीजिए, ठीक है? तो दादी की विशेषताएं सुनी, तो अब से जो भी विशेषताएं हैं वो सब याद कर लीजिए। याद करेंगे तो लक्ष्य भी आएगा, बार बार याद आएगा। फिर हमको केवल उसको सुनना या विशेषताएं सुन लेना नहीं, या उसको केवल याद कर लेना नहीं, बल्कि उसका स्वरूप बनकर हम भी उसका प्रतिरूप दें। आप सब मधुबन में आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गाना गा के तो स्वागत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। हाँ, करेंगे तो याद रहेगा। हाँ, करें। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। ओम शांति।